والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. وہ لوگ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں اور سوائے اپنی بیویوں کے یا اپنی لونڈیوں کے، فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ، تو بے شک وہ پھر اس معاملے میں یعنی بیویوں اور لونڈیوں کے بارے میں ان کے اوپر کوئی ملامت نہیں ہے. میں نے جیسے آپ کے ساتھ ابھی بات کی کہ جہنم میں سب سے زیادہ لے جانے والی دو ہی چیزیں ہیں، زبان اور شرمگاہ. تو یہاں پہ شرمگاہ کی حفاظت کی بات آ گئی. جب پیچھے آپ تزکیہ کریں گے تو زبان بھی صاف ہو جائے گی، لغویات سے بچیں گے تو تب بھی زبان صاف ہو جائے گی. اور اب جو رہ گئی بات شرمگاہ کی، تو شرمگاہ کی حفاظت کا مطلب یہ ہے کہ انسان زنا سے اور ایسی جو بھی چیزیں زنا کی طرف لے جانے والی ہیں ان سے دور رہے اور اپنی عزت کی حفاظت کرے سوائے اپنی بیوی یا لونڈی کے. کوئی اور ایسا مرد کے لیے مرد یا مرد کے لیے کوئی عورت ایسی نہیں ہے جس کے ساتھ وہ تعلق کر سکے. اسی طرح عورت کے لیے کوئی عورت نہ اور نہ ہی کوئی مرد اس قابل ہے کہ وہ اس کے ساتھ کوئی تعلق رکھے سوائے اپنے شوہر کے. ٹھیک ہے. اور اسلام نے اس کی اتنی بڑی سزا دی ہے کہ اگر کمارے نے زنا کیا تو 100 کوڑے اور شادی شدہ کرے گا تو رجم کی سزا. اتنا بڑا یہ گناہ ہے، اس لیے اس کے طرف جانے والے سارے راستے قرآن نے روک دیے، ان کے اوپر پہرے لگا دیے، ان کو بند کر دیا. اور ان راستوں میں ایک راستہ بے پردگی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ آزادانہ مردوں اور عورتوں کا ملنا جلنا ہے، نظروں کا بے باک ہونا ہے، بے شرمی کی باتیں دیکھنا سننا ہے، اسی طرح پرائیویسی کا خیال نہ رکھنا. یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو یہاں تک لے جاتی ہیں. اسی لیے اسلام نے کہا کہ پردہ کرے عورت، اپنی زیب و زینت کا اظہار نہ کرے، نظروں کو جھکائے رکھو. اسی لیے اسلام نے گھروں کی پرائیویسی کا کہا. اسی لیے اسلام نے کہا کہ بچوں کی شادیاں جلدی کر دو کہ یہ راستہ رک جائے. آج ہم نے سب کچھ الٹ کیا ہوا ہے. اسی لیے آج اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے، حرمت والے رشتوں میں بھی ایسی باتیں سننے کو ملنے شروع ہو گئی ہیں جو انسان کانپ جاتا اور سوچتا ہے کہ پھر بچیوں کی عورتوں کی عزتیں کہاں محفوظ رہ جاتی ہیں اگر محرم رشتے بھی ان کو نہیں چھوڑیں گے. تو یہ سب چیزیں اس لیے ہو رہی ہیں کیونکہ ہم نے اسلام کے احکامات کو توڑ دیا. ایسی چیزیں سکرینز پہ دیکھنا، جب ایسی چیزیں دیکھیں گے یا ایسی چیزیں سنیں گے تو سوچ میں بھی وہی چیزیں آئیں گی. جب سوچ میں وہ چیز آ جاتی ہے تو پھر انسان انہی کاموں کو کرنے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے. پھر آپ کپڑوں کے حالات دیکھ لیں، کم سے کم کپڑے ہیں اور چست سے چست کپڑے ہیں، اسی کو زیادہ حسین سمجھا جاتا ہے جو جتنا ٹائٹ کپڑا پہنے، جتنا جسم سے چپکا ہوا پہنے. ستر چھپانے کا حکم دیا گیا اور لوگ سمجھتے ہیں ستر تو چھپا ہوا ہے نا، ہم نے اوپر کپڑا ڈالا ہوا ہے، کپڑا ڈالا ہوا ہے، لیکن اگر ایسا چست لباس ہے کہ سارا فگر نظر آ رہا ہے تو وہ کیا ستر چھپانا ہو. عورتیں ایسی اگر لباس پہنتی جو اتنی فٹنگ والی ہیں جس سے سارا جسم کی ہر ہر بات پتہ چل رہی ہے کیسا ہے، وہ بتائیں وہ کیسا چھپانا ہو. جبکہ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو قسم کے لوگ ہیں جن کو میں نے ابھی تک دیکھا نہیں ہے اس امت میں، وہ جہنمی ہیں. ان میں ایک وہ عورتیں ہیں جو کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی، اس زمانے میں نہیں تھی، فرمایا ہی میں نے نہیں دیکھی ہیں، لیکن وہ جہنمی ہیں. جب فگرز واضح ہو رہا ہے تو لباس پہنا یا نہ پہنا ایک برابر ہو گیا، جب ٹائٹس پہنی ہوئی ہیں تو ٹانگیں کی ساری ساخت نظر آ رہی. اب عورتیں کہتی نہیں جی ہم ابایا نہیں پہنتے، چادر نہیں لیتے، لیکن ہم ڈھیلا ڈھالا لباس پہنتے. وہ ڈھیلا ڈھالا شیطان تھوڑے دنوں میں ہی وہ ٹائٹ کرا دیتا اور وہ جسم سے چپکنے لگتا ہے. تو جو ستر کی حفاظت کرتا ہے وہی اپنی عزت کی حفاظت بھی کر سکے گا. تو ایسے کپڑے پہننا تو کسی طرح بھی جائز نہیں ہے. اہل ایمان جو ہوتے ہیں نا وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش، وہ جو کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں، اور کبیرہ گناہ میں فحاشی بھی آ جاتی لیکن اس کو الگ سے مینشن کیا، اتنی بڑی یہ بات ہے. تو یہ समझना चाहिए कि आज हर तरफ इतनी बेहयाई है, फैल गई भी है, जिसमें जज्बात को उभारने वाली, आप कहेंगे पता नहीं फिल्मों के पीछे पड़ गई, लेकिन मैं क्या करूं, आज हर तरफ यही, फिल्मों के आप टॉपिक्स देख लें, आप ड्रामों के टॉपिक्स देख लें, इलेजिटिमेट रिलेशनशिप्स के ऊपर बना बनाई जा रही हैं आज फिल्में, या बस ऐसे ताल्लुकात बिल्कुल जो हराम है, जो बिल्कुल जायज ही नहीं, उनके ऊपर फिल्में बनाई जा रही हैं। सारी फिल्मों के मौजूदात ही क्या है, एक लड़का एक लड़की और उनकी कैसे शादी करनी है, बस ये क्या चीजें हैं, और उनके ताल्लुकात जो नाजायज हैं। अगर कोई, इस्लाम कहता है अगर कोई किसी को पसंद करता है तो पसंद करना एक फितरी बात है, किसी मर्द को औरत की तरफ अट्रैक्ट होना फितरी बात है, उसका रास्ता क्या है, निकाह कर लो, इल्ला अला अज़वाजी, इसका मतलब सिवाय बीवी के। और लौंडी की मैं इसलिए नहीं बात करूंगी, इस वक्त लौंडियां नहीं है, इसलिए उसके ऊपर डिस्कशन करने का कोई फायदा नहीं, जिस वक्त होंगी तो तब की बात है ना, तो कोई नहीं कह सकता कि लौंडियां भी तो हैं, सिवाय बीवियों के कोई और रास्ता नहीं है मर्द के लिए और औरत के लिए सिवाय शौहर के। इससे पता चलता है कि ये भी कितना जरूरी है कि किसी का निकाह हो जाए, ताकि वो अपनी जो ये एक नेचुरल अल्लाह ताला ने उसके अंदर नीड रखी है, उसको सही जगह पे इस्तेमाल कर सके। इस्लाम ने ये नहीं कहा इसको दबा दो, इस्लाम ने कहा अगर आप पसंद करते हो शादी कर लो, तो जिम्मेदारी उठाओ उसकी, इससे तुम्हारे बच्चे पैदा हो। लेकिन आज जो हमें दिखाया जाता है, जिस तरह की बेहया शायरी है, जिस तरह का म्यूजिक है, जिस तरह के रीडिंग मटेरियल है, जिस तरह के इंटरनेट पे जो सब चीजें हैं, सबको पता है जो जज्बात में ही जान पैदा करती है, और ऐसी चीजें इंसान की सोच को पल्यूट कर देती है। सोच देखें जब पल्यूट हो जाती है ना, गंदी हो जाए, सोच में गंदी बातें आने लगे, तो फिर शैतान का दरवाजा आपने ओपन कर दिया, फिर वो यहां पे नहीं रुकती, फिर एक सीन से अगला, अगले से अगला। इवन न्यूज में भी ऐसी, न्यूज के अंदर बहुत डिग डाउन करने की जरूरत नहीं है, जो किसी रेप की है, किसी गंदी ऐसी बात की है, उनके अंदर जाने के, मैं आप देखो तो सही, अच्छा किसने किया, कितने लोगों ने किया, कहाँ किया, क्या हुआ, कैसे, कोई जरूरत ही नहीं है। एक न्यूज थी, पता चल गई दर्द से, उसकी डिटेलों में जाके मजे ले रहे हैं, चस्के ले रहे हैं, इसकी क्या जरूरत है। और याद रखें यहाँ पे कहा गया इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत अयमानुहुम, यानी इनके सिवा कोई और रास्ता इख्तियार करना या किसी और शख्स के साथ, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, तो सभी हराम है। लिहाजा कोई औरत ये नहीं कह सकती मैं क्या करूं, मेरा शौहर तो मेरा ये हक ही अदा नहीं करता, लिहाजा अब कोई और तरीका सोचा जाए, कोई और रास्ता निकाला जाए, या कोई मर्द ये सोचे कि मेरी औरत तो मेरे साथ इस तरह से नहीं है जैसे मैं चाहता हूं, लिहाजा मैं आप कोई और रास्ता देखूं, और औरत कहे कि हाँ शादी ना करना, बेशक बाहर जाके किसी के साथ भी सो के आ जाओ, नहीं ये दुरुस्त नहीं है, ठीक है, चाहे मर्द हो चाहे औरत। इसीलिए मर्द को अगर उसके अंदर ये ड्राइव ज्यादा है, अगर उसके अंदर ये चीज ज्यादा है, तो इसीलिए उसको चार शादियों की इजाजत दे दी कि चार कर लो, लेकिन ये रास्ता इख्तियार ना करो। अगर तुम्हारे अंदर इतनी ज्यादा तलब है कि एक से तुम्हारी जरूरत नहीं पूरी होती, तुम चार शादियां कर सकते हो। और इससे बहुत बड़ा हमें ये भी पता चला कि निकाह का मकसद एक ये भी है कि दूसरे की ये जरूरत पूरी की जाए, और अगर कोई इसके काबिल नहीं है, कोई समझता है कि उसका स्पाउस इस काबिल नहीं है, तो तब उसको तलाक लेने का भी हक है, लेकिन कोई गलत रास्ता इख्तियार करने का हक हरगिज नहीं है। निकाह जरूर करा ही इसलिए था ताकि हराम की तरफ ना जाए, और अगर फिर भी हराम की तरफ जाना पड़ रहा है, तो इसका मतलब उस निकाह को खत्म किया जाए, कहीं और जाया जाए, कहीं कोई और निकाह किया जाए। तो इस्लाम हमें बैलेंस दीन, हमारा बैलेंस दीन है, ये आपको ये नहीं कहता अपनी ख्वाहिश को दबा दें, बस अब आपको यहीं रहना है और आपको बस ये है, चाहे हराम इधर उधर करते रहो, नहीं, कहता है कि आप सही रास्ते के ऊपर जाओ। और फमाने भी तो आजारी का फौला का मुला आदून, जो इसके अलावा कोई भी रास्ता तलाश करते हैं, तो वो ज्यादती करने वाले, हद से बढ़ने वाले, हदों को क्रॉस करने वाले, इनके अंदर सब वो लोग आ गए, जो होमोसेक्सुअलिटी भी इसमें आ गई, इसके अलावा पीरियड्स में औरत के साथ ताल्लुक रखना, ये भी इसके अलावा रास्ता तलाश करना, एनल सेक्स भी इसके अंदर आ गया। इसमें कुछ उलमा ने मैस्टरबेशन भी कहा है। अब मैं सारी चीजों को खोल के इसलिए बताना पड़ रहा है क्योंकि बहुत लोग इस चीज के अंदर सोचते ही नहीं है कि वो गलत कर रहे हैं, और ये हद से बढ़ने वाली चीजें हैं। ठीक है, बीवी के साथ भी अल्लाह ताला ने बता दिया कि कैसा ताल्लुक रख सकते हैं और गलत नहीं कर सकते। हदीस में आया, जिसने हाइजा औरत से सोहबत की या अमले कौमे लूत किया या काहिन के पास गया और उसकी पेशीन गोई की तस्दीक की, उसने दरअसल उस तालीम से कुफर किया जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल हुई। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे क्या नाजिल हुआ? ये कुरान, ये तालीम है ना, इसका कुफर कर दिया जिसने ये किया कि हाइजा औरत के साथ सोबत की। इतना बड़ा ये गुनाह। या एक अपनी बीवी के साथ, हाइजा औरत मतलब अपनी बीवी के साथ इसमें पीरियड्स में सोबत की, या अमले कौम में लूट किया। दूसरी मसनद अहमद की हदीस में अल्लाह ताला उस मर्द की तरफ कयामत के दिन हरगिज नजरे रहमत से भी नहीं देखेगा जो औरत से अमले कौम में लूट का इर्तकाब करे। यानी ये इतना बड़ा गुनाह है, अल्लाह ताला रहम ना जिसके ऊपर करे उस दिन वो फिर कहाँ जाएगा। इसी तरह निकाह मुता भी हराम है, कॉन्ट्रेक्चुअल मैरिज भी हराम है कि किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके और इतने दिन के लिए तुम्हारे साथ शादी है, एक हफ्ते के लिए, एक महीने के लिए, और उसके बाद खत्म है। ये निकाह मुता भी हराम है। ठीक है, तो ये सब चीजें इसी लिए हमारे माशरे के अंदर इस चीज को देखना चाहिए हमें कि हम कोई ऐसा काम ना करें जिससे के जिना की तरफ के दरवाजे खुलते हों, हमारे हाथों से कोई ऐसा काम ना हो, हम कोई ऐसी मजलिसे ना मुनक्किद करें, हम कोई ऐसे ऐसी मजलिसे ना करें, हम ऐसी कोई ऐसे चांसेस ना दें लोगों को कि वो हराम के रास्ते की तरफ जाने का जरा भी जहां से शायबा हो। ठीक है, आज तो बहुत आराम से हालात दुनिया में क्या चल रहे हैं, और आराम से कह देते हैं नहीं ये तो भाई हैं, ये तो भाभी हैं, ये तो फलां हैं, बस, जबकि हम देख नहीं रहे कि क्या हालात चल रहे हैं। हम ये ना कहें कि हमें को पता ही नहीं है कि दुनिया में हो क्या रहा है इस वक्त। आए दिन जो न्यूज़ आ रही है हम सब जानते हैं, और इसके अलावा जो चीजें न्यूज़ में नहीं आती वो भी बहुत कुछ है। तो इसलिए आज के वक्त में तो बहुत ज्यादा जरूरत है कि हम इस्लाम के इन अहकामात को, जो सद्दे जराए हैं, जो जो जिना के रास्तों को ब्लॉक करने वाली चीजें हैं, उनको इम्प्लीमेंट करें ताकि ये रास्ता बंद हो जाए और हमारी वजह से कहीं ना खुला रहे। और कितने ही रास्ते ऐसे हैं कि हम सब जानते हैं, और हम देख सकते हैं कि जब हम बन संवर के मर्दों के सामने जाते हैं, या शादियों पे, या नाच गाने होते हैं, या ये सब चीजें होती हैं, ये सब किस तरफ को ले जाने वाली चीजें हैं। मेरे ख्याल सब अक्लमंद हैं, सबको समझ तो आती होगी कि क्या है। अब इस चीजों से मुंह मोड़े रखे हैं अलग बात है, मगर ये भी एक रिक्वायरमेंट है, ये भी आपकी एक जरूरत है कि आप इसको फॉलो करें ताकि आप जन्नत की सिटीजनशिप ले सकें। ठीक है, तो इट्स दैट सीरियस। ये कोई बात ऐसे ही नहीं है कि अच्छा चलो कोई बात नहीं, हो गई तो ठीक है आगे चलो, हमसे नहीं किया जाता ये तो आज चल ही नहीं सकता। चल सकता है या नहीं चल सकता, हमने चलाना है, क्योंकि हमने, आप देखें लोग कितने पापड़ बेलते हैं किसी मुल्क की सिटीजनशिप लेने के लिए, क्या क्या नहीं करते, और जन्नत की सिटीजनशिप ऐसे ही मिल जाएगी, और आप सोचते हैं कुछ भी ना करना पड़े। लिहाजा इसके लिए हमें कुछ भी करना है, हमारी जन्नत हमारे हाथ से नहीं जानी चाहिए। वल्लदीना हम ली अमानातिहिम व अहदीहिम राउन, और वो अपनी अमानतों को और अपने अहदों को की निगरानी करने वाले। अमानत क्या चीज होती है? अमानत हर वो चीज को आप अमानत कह सकते हैं जो आपके आपको दी जाए और आप के जिम्मे लगाई जाए और उसके बाद आपसे वापस ली जाए, जो आपसे वापस लेनी है, उसका एक हक होता है। अब इसलिए मैं आपको ये बता रही हूँ, इस तरह से आपको जरा समझना आसान हो जाएगा, क्योंकि अक्सर हम लोग ये समझते हैं कि अमानत बस वो है जो कि पैसे किसी ने रखवा दिए। आज तक तो वैसे ही नहीं कोई पैसे रखवाता, बैंकों में ही रखवाते हैं लोग, पैसे किसी ने रखवाए उसको हमें वापस देना है, ये है अमानत। ठीक है, ये तो अमानत है ही, लेकिन अमानत सिर्फ इतनी चीज नहीं है। अमानत का तो जो इसका दायरा कार है ना, बहुत वसी है, बहुत वसी दायरा कार इस तरह से है कि इसके अंदर तमाम जिम्मेदारियां भी आ जाती हैं, तमाम किस्म की नेमतें भी आ जाती हैं, वो भी हम मानते हैं ना, कुछ अल्लाह की तरफ से मानते हैं हमारे ऊपर है, जैसे जिंदगी है, सेहत है, बाज मानते हमने अपने ऊपर खुद ली नहीं है। मसलन है कि हम, मैंने एक जगह जॉब के लिए अप्लाई किया, ये जबरदस्ती नहीं किसी ने दिया, लेकिन हमने खुद ये जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली, ये हमने खुद अपने ऊपर अमानत रखी कि ये मैं जिम्मेदारी ले ली, ये भी अमानत है, ये जॉब अमानत है। कारोबार में आप किसी को चीज को कुछ बेच रहे हैं, ये अमानत है। घर की जिंदगी हो या बाहर की जिंदगी हो, ये इसमें अमानतें भरी पड़ी हैं। हमारा जिस्म अमानत है, और ये नहीं कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, नहीं, ये तो अमानत है, किसी ने आपको दी है ना, अब उसको वापस देनी है आपने, तो उसका हक अदा करना है। ठीक है, इसमें खयानत नहीं करनी, जैसे उसने कहा है बरतने को वैसे बरतना है। ओहदा अमानत है, कुर्सी अमानत है, हमारे बच्चे अमानत है, हमारी सलाहियतें अमानत है, ये सब हम मानते हैं। अब मुलाजमत आप कहीं कर रहे हैं, हर कोई कहता है जी मुझे मुलाजमत तो मिल जाए, जॉब मिल जाए, काम मैंने नहीं करना। अगर अमानत का एहसास होगा ना, तो इंसान काम भी सही करेगा कि ये मेरे मेरे पर अमानत है, मैंने ये काम सही करके देना। ये नहीं कि इसको क्या पता, आपके पास कोई कुछ कारोबार आप करते हैं, वो उस बेचारे को पता ही नहीं कि ये चीज क्या होती है, मसलन वो उसको उस कपड़े का नहीं पता जो आपसे खरीदने आया, या उसको उस गाड़ी का नहीं पता जो वो आपसे ठीक कराने आया, या उसको कंस्ट्रक्शन का नहीं पता वो आपसे आप कॉन्ट्रैक्ट देने आया। अब लेकिन आपको तो पता है ना, आपको तो इन डाउट पता है, अब आप उसके साथ धोखा कर रहे हैं, तो आप अमानत में खयानत कर रहे हैं, क्योंकि आपने उससे जो प्रोजेक्ट लिया है या वो जो आपको पैसे दे रहा है वो उस ठीक चीज के दे रहा है, और आपको पता है कि इसके अंदर तो मसलन गाड़ी है, इसमें तो कोई खराबी है ही नहीं है, लेकिन मैंने वैसे ही बना लिया कि इसमें तो ये भी डिफेक्ट है, ये भी डिफेक्ट है, या उसको थोड़ा सा खराब करके भेज दिया, आगे फिर आएगा दोबारा मेरे पास। ठीक है, एक डॉक्टर है, उसके पास ये अमानत है कि एक मरीज उसके पास आया है, अब उसने कहा चलो मैं अपने पैसे बनाता हूँ, मैं ये भी टेस्ट लिख दूँ, ये भी टेस्ट लिख दूँ, और यहाँ यहाँ से मुझे इन दवाइयों वालों से मुझे पैसे मिलते हैं, मैं ये दवाई जरूर इसको लिख दूँ ताकि मुझे पैसे मिलते रहें, और ऐसी सी बीमारियों की दवाइयाँ लिख दी जो उसको है भी नहीं, या सस्ती मिल सकती थी आपने महंगी लिख दी क्योंकि आपको फायदा मिल रहा है। देखिए ये सारी चीजें हैं ना, ये अमानते हैं, इवन मजलिस की बातें अमानते हैं। अब आप मजलिस में बैठे हैं इस वक्त, अब आप ये बातें जो आप सुन रहे हैं, आप बाहर जाके कहें जी उन्होंने तो ये कहा था, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोई बात को उलट पुलट करके बता दिया, और वो दूसरे को भी गुमराह किया, और एक इंतशार फैलाया, एक फसाद फैलाया। बाज लोग एक जगह बैठते हैं फिर जाके दूसरी जगह कहते हैं मैं, पता है वो ये कह रही थी, हालांकि उसका ये मकसद नहीं था कहने का, ना ये मतलब था, ना ये उसने इस तरह से कहा भी नहीं था, उसको ट्विस्ट करके अपने मुताबिक बना के तो आगे पहुंचा दी। ये अमानते हैं, मजलिसों की बातें अमानते हैं, राज अमानते हैं। कोई आपको कहता है देख के मेरी ये बात ना किसी को ना बताइएगा, आप पे जिम्मेदारी है कि आप नाम बताएं, और आप जाके फौरन दूसरे को बता देते हैं, ये भी अमानत थी ना, तो इसका मतलब हमें ये सारी बातों में भी केयरफुल होना पड़ेगा। पैसे भी अमानत हैं, अल्लाह ताला ने दिए हैं ना, तो फिर अमानत है, इनकी हिफाजत कैसे करनी है, जैसे अगर राई करता है, राई अपनी भेड़ बकरियों की कैसे हिफाजत करता है, कोई इधर ना चली जाए उधर ना चली जाए, कोई ऐसे ना हो जाए, कोई गुम ना हो जाए, किसी को भेड़िया ना खा ले, इस तरह हमें सारी अपनी अमानतों की हिफाजतें करनी है। ठीक है, और शौहर के राज ये भी अमानत होते हैं, शौहर की बातें ये भी अमानत है, मियाँ बीवी के बेडरूम की बातें ये भी अमानत है, अनलेस किसी को कोई प्रॉब्लम है और उसने किसी इमाम से या किसी टीचर से पूछनी है कोई बात, वो उसको बताता है कि भाई इस तरह मेरा प्रॉब्लम है, वो एक अलग बात है, लेकिन अदरवाइज अमानत है। ऐसे ही नहीं कि दोस्तों को बता रहे हैं, सारे खानदान को बताया भाई ऐसे होता है ऐसे होता है, मेरा शौहर ये करता है या वो करता है, या आपने किसी तरह किराए का घर लिया है उस पे भी कॉन्ट्रैक्ट आप करते हैं, ये अमानत है क्या? कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया उसको छोड़ दें, जैसे उसने आपको दिया था वैसे उसको वापस हवाले करें, ये नहीं कि तोड़ फोड़ के, या ये नहीं कि हमने अब छोड़ना ही नहीं है। तो अमानतें तो बहुत बहुत दूर तक जाती हैं, ये जो नाजायज कब्जे कर लेते हैं ये तो बिल्कुल ही खयानत है, ये तो उनकी चीज ही नहीं थी ना उनके सपूत की गई। अच्छा फिर अहद, अहदिहिम, अहद जो हम करते हैं, वादे जो हम करते हैं, या कॉन्ट्रैक्ट्स या मुआहदे जो हम करते हैं, या जो हम कमिटमेंट्स करते हैं, सारे अहद में आ जाते हैं। नजर भी मानना ये भी अहद है, आप अल्लाह ताला से ये अहद कर रहे थे, मैं मन्नत मानती हूँ, जिसको नजर मन्नत कहते हैं, मन्नत मानती हूँ मैं इतने नफल पढ़ूंगी तो उसके बाद कुछ होश ही नहीं। तो ये एक तो हम अपनी निजी जिंदगी में, पर्सनल लाइफ में वादे करते हैं ना, उनको भी पूरा करना। हम कहते हैं ना ये बड़े, अब हम क्या कहते हैं, पहले जमाने के लोग कहते थे जी मैंने जुबान दे दिया उसको, मैंने जुबान दी है तो मैं नहीं सिफिर सकता। हाँ तो जुबान की क्या, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स की कोई परवाह नहीं, जुबान देना तो कोई चीज ही नहीं रह जाता, पता नहीं किस किस को क्या क्या जुबानें दे के आ जाते हैं। आप सोचें हजरत मुआविया जो थे वो एक दफा लश्कर लेके गए, तारीख का बड़ा वाकया आता है ये, तो जो कॉन्ट्रैक्ट पीस कॉन्ट्रैक्ट था ना उसके साथ दूसरी कौम के साथ, वो खत्म होने वाला था, तो सरहद पे ले जा के खड़ा कर दिया अपनी फौज को कि जो ही कॉन्ट्रैक्ट का वक्त खत्म होगा हम हमला कर देंगे, उसी वक्त कर देंगे। तो उन्होंने जो ही खत्म हुआ हमला कर दिया, दुश्मन अभी तैयार नहीं था, इलाके के इलाके फतह करते हुए अंदर तक चले गए। तो एक जगह पे पहुंचे तो पीछे से एक सवार आया, उसने दौड़ता हुआ आया और वो कह रहा था अल्लाह के बंदो ठहर जाओ, अल्लाह के बंदो ठहर जाओ, और आके कहने लगा मुसलमानों का शेवा ये है कि मुआहदे की पाबंदी करें और धोखेबाजी नहीं करें। तो हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया मैंने तो कोई धोखेबाजी नहीं की। तो उसने कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस चीज़ से मना किया है, तो आप अपनी फौजों को आगे नहीं बढ़ा सकते थे, आपने ये जो ये भी मुआहदे की खिलाफ वर्जी हो गई कि आपने मुआहदे का जो ही खत्म हुआ आपने उसी वक्त हमला कर दिया और उनको अल्टीमेटम नहीं दिया। तो हज़रत मुआविया ने कहा कि ये कैसे कैसी ये बात है, तो उन्होंने ये हदीस फिर सुनाई कि किसी भी शख्स के लिए कोई मुआहदा बंद करना या खोलना उस वक़्त तक जायज़ नहीं जब तक कि वो तारीख ना आ जाए, वो वक्त ना आ जाए, उसको आप पहले से नहीं लाके लश्कर खड़ा कर सकते, पहले से नहीं तैयारी करके वहां पे खड़े हो सकते। तो हजरत मुआविया ने ये बात सुनी, आप सोचें अपनी फौज से फरमाया कि सारा इलाका खाली कर दो, पीछे चले जाओ, जहां से हमने स्टार्ट किया था वहीं पे वापस चले जाओ, वापस चले गए थे। हालांकि कोई आसान होता है इलाके पता करना, तो इतने मुआहदे के पाबंद थे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो आपको पता है ना कि जब 3 दिन तक, ये तो नबूवत से भी पहले की बात है कि 3 दिन तक एक बंदे का इंतजार किया था, कि उसको कहा था कि यहाँ पे इंतजार करेंगे, तो वो तो भूल भी गया। और कैसी बात थी कि काफिर भी कहते थे नबूवत से पहले कि ये सच्चे और वादे के पक्के हैं, तो कोई कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं किया था उन्होंने कि भाई अंगूठे लगवाए हों या साइन किए हों, हम तो उसको ही कॉन्ट्रैक्ट समझते हैं, उसको ही अहद समझते हैं ना, उसका भी आज पास नहीं है, तो जुबान की बात का तो क्या होगा। तो वो इतनी ज्यादा इस चीज की पर मर केयरफुल रहते हैं कि हमने किसी से कमिटमेंट कर लिया। आप देखें कमिटमेंट चाहे आप रिश्तेदारों से करें, चाहे आप अपने बिजनेस में किसी के साथ कमिट कर लें, आप कमिटमेंट का हाल तो देखें, आप सारे इस चीज से वाकिफ होंगे, दर्जी के पास जाओ, अच्छा जी कब कपड़े दोगे, एक कमिट कर लिया 1 हफ्ते में दे दूंगा, फलां दिन दे दूंगा, उसके बाद आप चक्कर लगाते रहे। कमिटमेंट कर लिया किसी ने कि आपका काम ये करके देगा, अब उसके बाद वो चीज गायब है, पैसे भी ले लिए गायब है, अब आप पीछे भागते फिरते हैं, ये कमिटमेंट का हाल है। इसी तरह किसी को आप टाइम देते हैं ना, उतने टाइम पे आप वहां पे पहुंच जाए, ये कमिटमेंट है। अगर आपने देर करनी है तो उसको बता दें कि मैं इतने बजे नहीं आ सकता, मैं इतने बजे आऊंगा, लेकिन ये नहीं है कि आपको 2 बजे का टाइम दिया अब आप 5 बजे पहुंच रहे। इसी तरह आपने किसी का से कहा मैं आऊंगी, ये कमिटमेंट आपने कर लिया उसके साथ, अब ये नहीं कि आप आए ही नहीं, हाँ कोई इमरजेंसी हो गई ऐसी बात हो गई तो भी उसको बता दें, लेकिन ये नहीं कि गायब हो जाए। तन बसा कोशिश यही होनी चाहिए कि मैं अपनी कमिटमेंट निभा दूं। एमरजेंसी हालात तो देखिए हर चीज में हो सकते हैं, वो अल्लाह ना करे किसी साथ हो, लेकिन वरना अपने वादों को पूरा करें। अब वादों को पूरा करने से हमारा ट्रस्ट दुनिया में भी कायम होगा। आज आप देखिए हमारा ट्रस्ट दुनिया से भी खत्म हो गया। हमारे पासपोर्टों को लोग देखते हैं तो कहते हैं ये तो जाएंगे किसी जगह जगह का वीजा लेके, तो वो भी तो आपने एक कमिटमेंट ही की ना कि मैं जाऊंगा वहां पे, मैं आपके मुल्क में पूरा मन रहूंगा। और क्या किया वहां जाके, तखरीबी कार्रवाइयां शुरू कर दी, बेईमानियां शुरू कर दी, टेररिज्म शुरू कर दिया, पता नहीं क्या क्या शुरू कर दी। आपने तो वादा किया था हम इतने अरसे में वापस आ जाएंगे, 6 महीने का वीजा लिया, वह साल भर हो गए वहीं पे रहते जा रहे। इसलिए आज दुनिया में हमारी साख देखे, हमारे पर कोई ट्रस्ट करने को तैयार नहीं। इवन हम आपस में एक दूसरे को ट्रस्ट नहीं करते, हमें एक दूसरे का पता है कि हम क्या हैं। हम कहते हैं गैर मुस्लिम पे ट्रस्ट कर लो, मुसलमान से ना काम करो, ये झूठी बोलेगा, ये अमानत में खयानत ही करेगा, ये वादा तो करेगा तो कभी पूरा ही नहीं होगा, इसकी कमिटमेंट तो कभी भी नहीं पूरी होगी, कहेगा कुछ और करेगा कुछ। क्या है ऐसा नहीं है आज? देखिए ये देख लें कि यहाँ पे ये रिक्वायरमेंट है, और आज उम्मत मुस्लिमा का हाल क्या है, और किसी का क्या कहना, हम अपनी हालात देख लें, हम ना किसी को जुबान देके उसके ऊपर पूरे रहते हैं, ना अपनी कमिटमेंट्स निभाते हैं, ना अपने वादे पूरे करते हैं, ना हम अपनी अमानतों का ख्याल करते हैं। जॉबें कर रहे हैं जहां पे इतने आवर्स की जॉब है, उसमें 9 to 5 की जॉब है, हम 4 बजे ही बैग बंद करके चल पड़ते हैं, या वहां बैठे इंटरनेट सर्फिंग करते रहते, जॉब को पूरा वक्त नहीं देते, ऑनेस्टली अपनी जॉब नहीं करते दयानतदारी के साथ, तो अमानत में खयानत ही हुई ना। लेकिन ये इसको ये लाइट बात नहीं है, क्योंकि ये सारी वो चीजें हैं जो कामयाबी के लिए की है। वल्लदीना हम आला सलातिहिम हाफिज़ून, और वो अपनी नमाजों की हिफाजत करते हैं। हिफाजत, हिफाजत करना मतलब सलावात, एक तो यहाँ पे है सलात इसम जिन्स के तौर पे आता है ना, तो सलावात के बाद ही सलावात वो ही बात हो गई। दूसरे ये के हिफाजत करते हैं, यानी अपनी नमाजों को उनके वक्त के अंदर अदा करते हैं, ये नहीं कि पूरे दिन की नमाजें रात को जाके पढ़ लें, यानी कि नमाजें कजा हो रही हैं कोई फिक्र ही नहीं है, नमाजों का कोई एहसास नहीं है। हिफाजत, हिफाजत जब चीज की करते हैं तो फिर कैसे होती है, सबको पता है हिफाजत करने का क्या माना होता है। तो इसलिए जाहिर है जब ऐसी नमाज होगी कि आपका ध्यान लगा रहे कि नमाज कि मैंने हिफाजत करनी है, यानी नमाज सही तरीके से फिर अदा भी हो जाए, ये भी हिफाजत है ना, फिर वजू भी सही हो जाए, मेरे वो जो मेरे कपड़े भी पाक हो, जगह भी पाक हो, क्योंकि मैंने नमाज की हिफाजत करनी है केयरफुली। बच्चे की हिफाजत करते हैं कैसे करते हैं, हर तरह से हिफाजत करते हैं ना, मौसम से भी करते हैं, चोरों से भी करते हैं, और किसी चोट लगने से भी करते हैं, गिरने से भी करते हैं, हर तरह से करते हैं ना। तो नमाज की सिर्फ ये नहीं है कि वक्त की हिफाजत तो कर ली बाकी चीजों का खैर, नहीं वक्त पे भी अदा करनी है, उसकी सारी लवाजमात जो उसकी शरायत है वो भी पूरी करनी है, ताकि हिफाजत से अदा हो जाए। जब अदा कर दी, हिफाजत के साथ सपुर्द कर दी, तो फिर मेरे जिम्मे से काम मुकम्मल हुआ, ठीक है, तो हिफाजत के साथ उसको आगे दे देना। अब इतनी बातें जो करेगा, ये 7 सिफात जिसमें होंगी, उलाइका हुमुल वारिसून अल्लदीना यरिसूनल फिरदौस, ये हैं जो वारिस हैं, और इन्होंने फिरदौस के वारिस बनना है। वारिस क्यों कहा गया, इसलिए एक वजह इसकी ये बयान की गई है वारिस करने कहने की, कि कयामत के दिन जो लोग जहन्नुम में जाएंगे उनकी जन्नत के वारिस ये लोग होंगे, क्योंकि ये इन्होंने उनकी जगह ले ली ना। वारिस वो होता है ना, कोई छोड़ के जाता है और फिर पीछे से उसका तरका किसी और को मिल जाता है, ये होती है ना विरासत, तो मोमिनों को उनकी जन्नतें मिल जाएंगी, वो अपने कुफर की वजह से या बदअमालियों की वजह से जहन्नुम में चलेगा। और दूसरी बात ये भी है, उलमा ने ये भी फरमाया कि मोमिनों को जन्नत बतौर विरासत मिलेगी, यानी इसमें ये नहीं है कि मुझे मेरे कामों की वजह से जन्नत मिली, मेरे अमल ही ऐसे थे, किसी को अपने अमल की वजह से नहीं मिल सकती, अल्लाह ताला ने उनका हक नहीं भी बनता, लेकिन उन्होंने अल्लाह को राजी कर दिया अपने अमल से, तो अल्लाह ताला ने अपने फजल से उनको जन्नत दे दी, ठीक है। तो इस तरह से वो वारिस बने फिर दाऊस के, हम फीहा खालिदून, इसमें वो हमेशा रहने वाले हैं। इसके बाद आगे अल्लाह ताला ने अपनी तौहीद के दलाइल दिए हैं इंसान की पैदाइश से, कि इंसान पैदा होता है किस तरह से, जो अशरफुल मखलूकात है वो भी पैदा हुआ। तो फिर सोचें कि वो खुद कैसे खुदा हो सकता है, कोई भी इंसान कैसे खुदा हो सकता है, और इंसानों के अलावा कोई कैसे खुदा बन सकता है, जबकि वो तो इंसान से सब नीचे हैं, इंसान सब में ऊपर है। हाँ, और वो अगर खुदा नहीं हो सकता तो कोई और कैसे हो सकता है। लिहाजा कोई भी खुदा नहीं, तौहीद का पैगाम है। और दूसरे ये कि ये एहसान तुम्हारे पर करने वाला अल्लाह है, उसने तुम्हें कैसे पैदा किया। वलकद खलकनल इंसान मिन सुलालत मिन तीन, और अलबत्ता तहकीक हमने पैदा किया इंसान को सुलाला से, यानी निचोड़ से, किसके, मट्टी के। आदम अलैहिस्सलाम तो मट्टी से पैदा हुए थे, बाकी सारे इंसान भी मट्टी से पैदा होते हैं, इसलिए कि हर एक इंसान की खुराक मट्टी से आती है और उसी से नुतफा बनता है जिससे वो पैदा होता है। सुम्मा जालनाहु नुतफतन फी करार मकीन, फिर हमने बनाया उसको एक नुतफे की शक्ल में। इंसान सबसे पहले क्या होता है? नुतफा होता है, एक स्पर्म होता है, जो कहाँ रखा जाता है? करार मकीन में, रहमे मादर में, जहाँ वो 9 महीने तक आहिस्ता आहिस्ता परवरिश पाता है, नशो नुमा पाता है, ग्रो करता है। और ये कितनी उसके लिए महफूज जगह बनाई अल्लाह ताला ने, जहां पे उसको ग्रो किया। इस नुतफे को देख के कोई इंसान नहीं ये कह सकता कि ये नुतफा एक दिन एक इतना प्यारा सा बच्चा बन जाएगा, जिसको देख के हर एक बंदा कहता है ना, कितना क्यूट है, कितना प्यारा है, हर एक को प्यार आता है, ये ऐसी चीज बन जाएगा। सुम्मा खलकना नुतफा अलाकतन, और हर एक अपनी तखलीक के ऊपर गौर करे, हर एक इंसान सोचे कि एक दिन मैं एक नुतफा थी जो रहमे मादर में थी, फिर अल्लाह है वो, खलक ना हमने बनाया इस नुतफे को अलाका। कौन सी मशीनरी दुनिया की, कौन सी साइंस दुनिया की है जो नुतफे को अलाका बनाए? फलकना अलाका था मुदगा, और फिर उस मुदग उस अलाका को मुदगा बनाए। अलाका क्या चीज है? जमा हुआ खून। वैसे अलक कहते हैं मुअल्लक, जैसे होता है ना मुअल्लक, ये चीज मुअल्लक है, लटकी भी है। तो उससे आप देखें कि अलका भी जो है वो भी उस जमाने के अंदर तो कोई साइंस, कोई अल्ट्रासाउंड, कोई ऐसी चीज नहीं थी जिससे पता चलता कि जो बच्चे का जो फॉर्मेशन है उसके अंदर क्या मरहले गुजर रहे हैं और क्या उसकी शक्लें बन रही हैं। लेकिन आज जब साइंस ने तरक्की की और इस स्टेज पे इसको देखा, इंसान तो नहीं कह सकते, वो जो फीटस है उसको देखा, तो वो रहमे मादर के अंदर ऐसे जोंक की तरह, लीच की तरह चिपका हुआ था और लटका हुआ था। तो सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला ने अलाका बताया। इसीलिए मुझे अब याद नहीं कौन से वो एक डॉक्टर है, उन्होंने इस्लाम लाने का सबब यही आयात बनी कि उन्होंने फरमाया कि उन्होंने कहा कि ये आयात जब मैंने पढ़ी तो मुझे पता चला कि ये तो बिल्कुल वही, कैसे कैसे साइंस नहीं थी, कुछ नहीं था, कैसे कुरान ने वो चीजें बता दी जो आज इंसान इतनी तरक्की करके जान सका है, और वो वाकई अलाका ही है। तो ये वाकई अल्लाह ताला ही हो सकता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो नहीं मालूम था, उन्होंने तो कोई किसी जगह से पढ़ा नहीं, कोई उनके पास और इल्म नहीं था जिससे उनको ये बात मालूम होती, तो वो इस्लाम ले आए थे। फिर फखलकनल अलग था मुदगा, फिर इससे हमने इस जमे हुए खून से या इस लटकी हुई चीज से हमने क्या बनाया? मुदगा, गोश्त की बोटी। फखलकनल मुदगत आइजामा, और फिर बनाया हमने बोटी को हड्डियां, फिर इसके बोटी को हड्डियां बनाया, और फिर फकसौनल आइजामा लहमा, फिर इन हड्डियों के ऊपर गोश्त चढ़ाया। आप सोचें, अगर सिर्फ गोश्त होता, मुदगा ही होता, और मुदगा कहते हैं उन्होंने देखे सुभान अल्लाह ये भी कि चबाए हुए गोश्त को कहते हैं, तो आज साइंसदानों ने इस तरह से देखा है कि उस टाइम पे जो शक्ल होती है फीटस की वो ऐसे ही होती है जैसे गोश्त चबाया हुआ है। जैसे आप च्युइंगम को चबा चबा के जब फेंकते हैं तो उसके ऊपर कैसे आपके दांतों के भी निशान लगे होते हैं, तो कैसे वो होती है, उस तरह से ये मुदगा है। सुभान अल्लाह, आज उन्होंने देखा तो वही तस्वीर नजर आई जो कुरान ने 1400 साल पहले बताई थी। सुभान अल्लाह, और फिर अल्लाह ताला ने, अगर वो सिर्फ गोश्त को छोड़ देता वैसे ही तो इंसान खड़ा नहीं हो सकता था, गोश्त तो ऐसे ही पड़ा रहता है जमीन पे, हड्डियां उसके अंदर बनाई, हड्डियों का ढांचा बनाया, अगर सिर्फ हड्डियां बना देता और ऊपर इसके गोश्त ना चढ़ाता तो आप स्केलेटन को देखते हैं, हम वो होते, देख के भी उसको खौफ आता है। तो अल्लाह ताला ने कितना खूबसूरत उसको बनाया, कैसे देखने सुनने वाला बनाया, और गोश्त जो चढ़ाया हर जगह बराबर नहीं है, कहीं कम है कहीं ज्यादा है, सुभान अल्लाह। सब जगह फा फा आ रहा है ना, फा से बताया गया कि इसके बाद ये स्टेज, इसके बाद ये स्टेज, यानी इंसान को अल्लाह ताला ने एक स्टेज से दूसरे, दूसरे से तीसरे में मुंतकिल फरमाया, और ये सिर्फ अल्लाह ताला ही कर सकता है, कोई और नहीं कर सकता, तो फिर तुम अल्लाह की तौहीद को क्यों नहीं पहचानते। और फिर फरमाया सुम्मा अंशाना खलकन आखर, अंशा मतलब उठाया, फिर पैदा किया हमने उसको खलकन आखर, एक दूसरी तखलीक, यानी पहले ये स्टेजेस थे, फिर एक स्टेप पिछले में फा फा आया, सुम्मा जो है ना वो तराखी का थोड़ा थोड़ा टाइम के बाद फिर ये हुआ, और ये कौन सा मरहला है, इसका मतलब ये एक और जदीद खल्क उसकी, पहले तो सिर्फ तब्दीलियां होती रही ना, एक ही चीज थी तब्दीलियां होती रही, फिर सुम्मा आया तो दूसरी तकलीफ हुई। तो हदीस से हमें ये पता चलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेशक तुम में से किसी एक की खलकत को उसकी माँ के पेट में 40 दिन तक रखा जाता है, फिर 40 दिन तक वो जमा, यानी पहले नुतफे की सूरत में 40 दिन रहता है, फिर जमे हुए खून की सूरत में 40 दिन, फिर गोश्त की सूरत में 40 दिन, फिर अल्लाह ताला फरिश्ता भेजता है, यानी ये कितने कुल दिन हो गए, 120, फिर अल्लाह ताला फरिश्ता भेजता है तो इसमें रूह फूंक देता है, और उसको चार कलिमात लिखने का हुक्म दिया जाता है, वो इसका रिस्क लिखता है, इसकी मौत और हयात लिखता है, उसका अमल लिखता है, और उसका बदबख्त या खुशबख्त होना लिखता है, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। तो ये माँ के पेट में ही उसकी मौत का फैसला हो जाता है कि इसने कितना जीना है, हम बाद में कहते हैं हाय ये कर लेते तो ना मरता, हाय डॉक्टर के चला जाता तो ना मरता, तो माँ के पेट में ही था तो लिख दिया गया, और उसका रिस्क भी लिख दिया गया, उसका अमल भी लिख दिया गया, उसकी खुशबख्ती और बदबख्ती भी लिख दी गई, लेकिन ये तब होता है जब रूह फूंकी जाती है, ये रूह फूंकने के लिए फरिश्ता आता है, उससे पहले वो एक लिविंग थिंग तो होता है क्योंकि बढ़ रहा है, लेकिन जैसे प्लांट्स भी बढ़ते हैं ये भी बढ़ते हैं, तो उस लिहाज से उसके अंदर लेकिन रूह नहीं होती, इसी से फिर बाज़ उलमा ने इस चीज की गुंजाइश, गुंजाइश मैं कह रही हूँ, इस चीज की गुंजाइश दी है कि कोई वजह है तो अगर कुछ अबॉर्शन कराना पड़ता है तो ये इन 120 डेज के अंदर ही होना चाहिए, क्योंकि अभी रूह नहीं फूंकी गई, 120 डेज के बाद रूह फूंक दी जाती है, फिर वो एक इंसान है, फिर उसके बाद उसको अबॉर्ट कराना कत्ल है, ठीक है, वो माँ के पेट में या बाहर आए, रूह तो उसके अंदर है ना। ये आयात, एक और बात बताऊं कि ये आयात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब उतरी थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये आयात तिलावत फरमाई, तो हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमाते हैं कि मैंने बेसाख्ता कहा तबारक अल्लाह अहसनुल खालिकीन, वैसे वाकई मुंह से निकलता है ना, कितना बाबरकत है वो अल्लाह, उसकी जात बड़ी बाबरकत है, जो इतना अच्छा तखलीक करने वाला, सबसे अच्छा तखलीक, जो सबसे अच्छा तखलीक करने वाला है, तो कहते हैं कि उसके बाद कुराने पाक की ये आयत उतरी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, यानी ये हिस्सा इस आयत का उतरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, फिर ये अल्फाज तिलावत फरमाए फतेह बारक अल्लाह अहसनुल खालिकीन, तो ये भी इसमें भी अल्लाह की तरफ से एक और मुआफ़कत हुई हजरत उमर की, यहाँ यानी हजरत उमर ने एक बात फरमाई और अल्लाह ताला ने उनकी बात को, वही बात कुरान में उतार दी, जैसे और भी कई आयात है लेकिन ये भी एक उनमें से है। तो अल्लाह ताला जो तुम्हें पैदा करने वाला है उसको पहचानो, यानी यहाँ से इंसान की औकात उसको याद करवाई गई कि इंसान देखो तुम क्या चीज थे, और उस रब ने तुम्हें कैसे बना के खड़ा कर दिया। फिर जब तुम बड़े हो गए, तुम्हें अकल आने लगी, समझ आने लगी, तो तुम कैसे अल्लाह ताला के आगे अकड़ते फिरते हो और कैसे उसकी नाफरमानियां कर सकते हो। अल्लाह अकबर। तो इंसान देखे, हम अपने बच्चों को देखते हैं, जब वो छोटे होते हैं तो हमारी बड़ी यही सारी बातें मानते हैं, जो ही वो बड़े होने लगते हैं, उनको अक्ल आने लगती, समझ आने लगती, तो माँ बाप के आगे खड़े हो जाते हैं, उनको बातें सुनाते हैं, उनको जवाब देते हैं, बहसें करते हैं और उनकी बात नहीं मानते, तो माँ बाप कैसे फील करते हैं फिर। तो अगर हम पेरेंट्स हैं और हमें ये एहसास होता है कि देखो ये कैसे थे और मेरी अब नाफरमानी कर रहा है, जबकि मैंने तो इसके लिए इतना कुछ किया, और ये जब छोटा था तो मैं इसके लिए क्या क्या नहीं करती रही, और आज मुझे आंखें दिखाता है, तो अल्लाह ताला इंसान को भी उसकी औकात याद कराता है, उसकी असल याद कराता है। हमने तो अपनी औलादों पर क्या कोई एहसान किए होंगे जितने एहसानात अल्लाह ताला के हमारे ऊपर। तो उसके बाद इंसान को अकल आ जाए और वो फिर लड़ने लगे और बहसें करने लगे और अल्लाह की आयात में ही मीन मेखे निकालने लगे। अल्लाह अकबर। तुम इन्नकुम बाद ज़ालिका लमय्यितून, फिर तुम इसके बाद दोबारा मरने वाले हो, फिर उसके बाद तुम्हें मौत आ जानी है, फिर मौत का मरहला भी आएगा तुम्हारे ऊपर। यानी जब इंसान अच्छा भला होके खड़ा हो जाता है ना, तो फिर वो सोचता है कि अब तो बस मैंने यही रहना है, और अब तो मेरे अंदर बड़ी ताकत है, वो बड़ी बातें करता है, और ये नहीं सोचता कि एक दिन उसको मौत आनी है, वो अपने सामने मौत के नजारे देखता है। देखिए आज तो ये सारी चीजें ही हम सामने देखते हैं, उस जमाने में तो शायद लोगों को ये स्टेजेस का भी ना पता हो, और उनको ना, यानी कुरान से तो पता चला लेकिन उनको नहीं पता होगा कि किस तरह एक स्टेज से दूसरा और दूसरे से तीसरा कैसे। आज तो हम ये सारे स्टेजेस को थ्रू ये जो अल्ट्रासाउंड है, इससे सब स्टेजेस को देखते हैं, हम सब ये जान गए हैं कि यही सारे स्टेजेस अल्लाह ताला ने जो बताए हैं, ये तो एक मोजा है। जिसको मोजा देखना है, तो क्या ये मोजा नहीं है? वो इंसान मोजे मांगता है, मोजों के इंतजार करता है, क्या ये मोजा नहीं? इससे बड़ा क्या मोजा हो सकता है कि इन मरहलों से गुजार के क्या चीज बना के खड़ा कर दी। और फिर वही नहीं कि सिर्फ एक गुड़िया की तरह, एक डॉल की तरह एक जिस्म बन गया, उसके अंदर कितना कुछ है, अकल है, समझ है, सोच है, दिल धड़क रहा है, मेदा काम कर रहा है, आंते हैं, जिगर है, पूरा एक निजाम है, दिल है, दिमाग है, कितना एक निजाम चल रहा है, कितने सारे सिस्टम्स चल रहे हैं अंदर, कितना कुछ है इतनी छोटी सी बॉडी में। तो कहने को दिल नहीं चाहता फतबारक अल्लाह आसमान खाल की, वाकई अल्लाह तू वाकई बड़ा बाबरकत है, इतना अच्छा पैदा करने वाला। इंसान बेख्तियार होके कह लेता है। तो ये एक बूंद नुतफे से क्या कमाल है उसका, और उस वही है जो तुम्हें मौत भी देगा, तुम उसके बाद मरने भी वाले हो। सुम्मा इन्नकुम यौमल कियामते तुबअसून, फिर तुम उसके सामने उठाए जाओगे भी कयामत के दिन, हिसाब के लिए खड़े किए जाओगे। तो अल्लाह ताला ने सारी जिंदगी का निजाम दिखा के इंसान को बता दिया, देखो ये तुम्हारे स्टेजेस हैं, पहले मौत, फिर जिंदगी, फिर मौत, फिर जिंदगी। तो दो मौतें, दो जिंदगियां इंसान के ऊपर आती हैं, और उसके बाद जो ये आखिर की जिंदगी है, इसके बाद कोई मौत नहीं। जो पहली मौत थी उसमें उसने अहद अलस्त लिया, वो भी एक वादा था, वादों को निभाने की जहां बात आई थी ना, तो वो भी तो एक वादा था जो हम सब ने किया, क्या उस वादे को नहीं निभाना? तो अल्लाह ताला से भी वादा किया हुआ, और एक सबसे बड़ा वादा है जो कलमा पढ़ के हम वादा करते हैं कि हम एक अल्लाह की इबादत करेंगे, उसके अलावा किसी को इलाह नहीं मानेंगे, और उसके बाद अपनी जिंदगी में कितने इलाह खड़े कर लेते हैं, कहीं अपना नफ्स इलाह बना हुआ है, कहीं ख्वाहिशात इलाह बनी हुई है, कहीं लोग इलाह बन गए हैं, कहीं औलादें इलाह बन गई। तो वो तुम्हें अपने उठाएगा कयामत के दिन वाला, कद खलकना। फिर अल्लाह ताला ने और दलाइले तौहीद दी हैं, तौहीद के ये सारे दलाइल हैं कि देखो अल्लाह ताला ने तुम्हारे ऊपर ये कैसे एहसानात किए, और ये करने वाला सिर्फ वही है। वाला कद खलकना फौकुकुम सबअ तराइक, और वो ही अल्लाह है जिसने बनाया तुम्हारे ऊपर सात रास्ते। रास्ते से मतलब तरीका, रास्ते को कहते हैं, तराइक उसकी जमा है, लेकिन ये मुतशाबिहात में से है, क्योंकि बाज ने कहा ये सात आसमान है, बाज ने कहा सात रास्ते ही हैं जिनके ऊपर से फरिश्ते गुजरते हैं, जहां पे फरिश्ते गुजरते हैं, या सितारों के चलने की जो जगह, जो ऑर्बिट्स है वो हैं, या जिन्नात की गुजर गए, वल्लाहु आलम, हम नहीं जानते। मुतशाबिहात में से हम नहीं जानते। और तरीक कहते हैं ऊपर तले जो चीज होती है ना, उसको भी तरीक कहते हैं, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, तो सात आसमान भी हो सकते। अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए सात बनाए आसमान रास्ते, व मा कुन्ना अनिल खल्की गाफिलीन, और ये ना समझना बना के हम भूल गए, हम अपनी मखलूक से गाफिल है ही नहीं। अल्लाह ताला अपनी किसी मखलूक से भी गाफिल नहीं, चाहे वो चरिंद परिंद है, चाहे वो एक चींटी क्यों ना, या उससे भी कोई अदना चीज, उससे भी छोटी चीज, चाहे वो क्यों ना हो, अल्लाह ताला अपनी किसी मखलूक से गाफिल नहीं। गाफिल का मतलब क्या, यानी उसको भूल नहीं गया अल्लाह ताला। अल्लाह ताला उनको मुसलसल उनकी जरूरियात वहां पहुंचा रहा है, पूरी कर रहा है, चाहे उनके खाने पीने की जरूरत हो, चाहे उनके जिंदा रहने के लिए और कोई जरूरत हो, हवा की जरूरत है, पानी की जरूरत है, हिफाजत की जरूरत है, मौसम के सही होने की जरूरत है, टेम्परेचर सही रहने की जरूरत है, बहुत सारे फैक्टर्स है ना जो सिर्फ इंसान की बात नहीं हो रही, मखलूक के सर्वाइवल के लिए जरूरी है। अगर यहाँ पे बहुत कोल्ड टेम्परेचर्स हो जाए तो सर्वाइवल खत्म हो जाए, जिंदगी खत्म हो जाए। अगर इतना हॉट हो जाए कि सूरज करीब आ जाए तो भी सर्वाइवल मुमकिन नहीं। तो अपनी मखलूक से गाफिल नहीं, फिर हर एक को खिलाना पिलाना, हर एक की उसकी जरूरत के मुताबिक उसको खिलाना। अगर शेर गोश्त खाता है तो उसको गोश्त ही दिया, अगर गाय की जरूरत बनाई घास तो उसको वो वहां पहुंचाई। इंसान की जरूरत जिस्मानी भी है, वो भी जरूरतें पूरी की, हवा भी, देखें ग्रेविटी है, एयर प्रेशर है, बहुत सारी चीजें, उसकी जिस्मानी जरूरियात भी पूरी की, रूहानी भी पूरी की, क्योंकि इंसान है ना, इसके पास इतनी अकल शऊर अल्लाह ने उसको दिया है और उसको एक मकसद के लिए भेजा है, तो उसकी ये रूहानी जरूरत भी थी कि उसको गाइड कोई करे, तो रसूल भेजे, किताबें भेजी। तो अल्लाह ताला अपनी मखलूक से गाफिल नहीं, उसने बना के छोड़ नहीं दिया, उसने कोई खेल तमाशा नहीं किया कि खेल खेला और फिर फेंक दिया। वो निगहदाश्त भी कर रहा है, वो ख्याल भी कर रहा है सबका, वो सबकी जरूरतें भी पूरी कर रहा है, वो रहनुमाई भी कर रहा है, वो हिफाजत भी कर रहा है, देखभाल भी कर रहा है, नशोनुमा भी दे रहा है, ग्रो भी कर रहा है, वो जिंदगी भी दे रहा है मुसलसल और मौत भी दे रहा है जब से ये दुनिया कायम हुई। सुभान अल्लाह। तो वो गाफिल नहीं, तो गाफिल ना समझो, और हमारे आमाल से भी गाफिल नहीं, मखलूक के हर हर अमल को भी जानता है और देखता है। अल्लाह अकबर। व अनजलना मिनस्समाई, और हमने नाजिल किया आसमान से, मा अन पानी भी कदर, साथ एक अंदाजे के, ऐसा नहीं पानी नाजिल कर दिया जैसे नूह अलैहिस्सलाम के दौर में हुआ था कि सारी जमीन ही डूब गई, सब लोग मर गए, और ऐसा भी नहीं पानी कमी की कि लोग प्यासे मर जाएं, कदर के साथ, ठीक है। फअस्कन्नाहु फिल अर्ध, फिर ठहराया हमने उसको जमीन में, फिर एक दफा ही पानी, देखे बारिश तो कभी कभी होती है ना, लेकिन जमीन में उसको प्रिजर्व करने के तरीके बना दिए, नदी नाले हैं, चश्मे हैं, नहरें हैं, दरिया हैं, फिर कुएं हैं, इस तरह की चीजें हैं, आप देखें उनके अंदर पानी को अल्लाह ताला ने ठहरा दिया कि इंसान अपनी जरूरत के मुताबिक इसको निकाल ले। लेकिन इंसान इसको फॉर ग्रांटेड ले लेता है, शायद आज तक हम जब से पैदा हुए देखते रहे ना, तो हमारे लिए कोई बड़ी चीज ही नहीं है कि अल्लाह ताला ने पानी उतार दिया तो क्या हो गया, या जमीन में पानी को प्रिजर्व कर दिया तो क्या हो गया, हम इसको इसकी कदर ही नहीं करते हैं। लेकिन उन जगहों पे जाके देखें जहां पे पानी की कमी है, वहां पे कैसे लोग रह रहे हैं, उनका सारे दिन का, केप टाउन वगैरह का बताते थे, तो सारे दिन का उनकी तो काविश ही, कोशिश ही क्या है कि पानी ला के रखा जाए, एक एक नल के आगे लाइनें लगी हुई और लोग पानी ले रहे हैं, अभी पानी खत्म नहीं किया। अल्लाह ताला चाहे तो पानी को खत्म भी कर दे, और इन्ना अला ज़हाब बिही लक़ादिरून, और हम इसको ले जाने पर भी कादिर, तब तुम क्या करोगे, पानी बना के देख लो, आप पानी बना सकते, अल्लाह ताला चाहे तो पानी गायब कर दे, قل ارايتم ان اصبح ماؤكم غورا فمن ياتيكم بماء معين. یہ سوال ہے ہم سے نا، ہر رات ہم یہ سوال اپنے آپ سے کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے پوچھا ہے، ہر رات ہمیں یہ سوال کیا جاتا ہے، سورہ ملک کے آخر میں ہے نا، کہہ دیجئے کیا تم نے کبھی سوچا اگر یہ پانی اللہ تعالیٰ اتنا ڈیپ لے جائے، اتنا ڈیپ اس کو لے جائے، تو کون ہے جو تمہیں یہ بہتے پانی لا کے دے؟ کون ہے؟ کوئی بھی نہیں. تو اللہ تعالیٰ وہی بات ہے کہ فرماتا ہے کہ اگر اللہ پانی لے جائے کون تمہیں لا کے دے؟ ہمارے تو سروائیول کا ہی مسئلہ ہو جائے، بوند بوند کو لوگ ترسنے لگے. آج تو ہم نل کھولتے ہیں تو سوچتے بھی نہیں ہیں کہ پانی کتنا ہم نے ضائع کر دیا، شاور لینے لگتے ہیں تو نکلتے نہیں گھنٹوں، لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کتنی بڑی اللہ تعالیٰ تیری نعمت ہے جو ہم استعمال کر رہے ہیں. اب یہی آلائی ربی کو ماتو کسی بان، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ہم نے پہلے پڑھا تھا اللہ تعالیٰ نے تھاما ہوا ہے آسمان کو کہ گر نہ پڑے، ساتوں آسمان ہمارے اوپر گر پڑے تو کیا ہو؟ اللہ اپنی مخلوق سے منہ پھیر لے تو کیا ہو ہمارا؟ وہ کہتا ہے میں غافل نہیں ہوں تم سے، اسی لیے ہر چیز آپ کو مل رہی ہے. غافل ہو جاتا تو سانس ہی بند ہو جاتی. تو اور پھر آسمان سے پانی برساتا ہے تب ہے کہ ہمیں پانی ملتا ہے. پانی برسنا بند ہو جائے، سمندر خشک ہو جائے، ندی نالے خشک ہو جائیں تو کیا کرو گے؟ فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَعَنَابٍ، اور پھر پیدا کیے ہم نے تمہارے لیے ساتھ اس کے باغات کو کھجور کے اور انگوروں کے. اور کھجور اور انگور کا خاص طور پہ نام کیوں لیا گیا؟ اس لیے کہ عرب لوگ انہی کو جانتے تھے، اور اس کے علاوہ بھی نام لیے گئے ہیں جیسے کیلے کا ہے، انار کا ہے، ان چیزوں کے نام لیے گئے ہیں، لیکن عرب انہی کو جانتے تھے اس لیے انہی کے نام لیے گئے. ہم سوچتے ہیں نا واٹر میلن بھی ہے اور بھی ہمارے اتنے سارے پھل ہیں، ان کے نام کیوں نہیں لیے گئے؟ تو اس لیے کہ وہ ان کو نہیں جانتے تھے. لیکن آگے کیا دی گیا؟ لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ، تمہارے لیے اور بھی بہت سارے پھل ہیں. منہا تاکلون، اس میں پھل بہت سے ہیں اور اس میں سے تم کھاتے بھی ہو، یعنی اور بھی بہت سارے پھل جو قیامت تک آنے والے پھل ہیں وہ ان میں آ گئے، ان میں سے تم کھاتے ہو، انجوائے کرتے ہو پھلوں کو. پھل ایک اتنی خوبصورتی بھی ہے ان کے اندر، دیکھنے میں بھی خوبصورت لگتے ہیں، کھانے میں بھی لذیذ، انرجی دینے والے بھی، نیوٹریشنل بیس بھی ان کی بہت اچھی. وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سَيْنَاءَ، اور ایک درخت وہ جو نکلتا ہے طور سینا سے. طور کیا ہے؟ وہ طور پہاڑ ہے، پہاڑ کا نام ہے. اور سینا جس کو سینین بھی کہتے ہیں، طور سینین، وہ ایک ہی بات ہے، سینا یا سینین، اس میدان کا نام ہے جہاں پہ یہ طور ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دیکھو تمہارے لیے وہاں پہ وہ درخت نکالتا ہے طور سینا سے، اور یہ کون سا درخت ہے؟ یہ زیتون کا درخت. اور زیتون اس زمانے میں، تو اب تو خیر اور جگہوں پہ بھی بہت ہے، لیکن پھر بھی آج بھی وہاں پہ سب سے زیادہ ہے، جارڈن میں اور فلسطین اور اس کے ارد گرد کے علاقوں میں نا، سب سے زیادہ وہاں زیتون اگتا ہے، اور بہت اعلیٰ زیتون وہاں کا ہے، اور وہاں کے لوگوں کو آپ دیکھتے ہیں کھاتے بھی بہت زیادہ یہ زیتون ہے. تو عرب لوگوں میں بھی زیتون کا کھانا ہوتا تھا، زیتون کھاتے تھے، تو اس لیے اس کا ذکر کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ وہاں سے نکالتا ہے. تمبو تو بدوہن، اگتا ہے کس سے؟ سات چکنائی کے، یعنی تیل بھی ہے اس کے اندر. وسبغن للآکلین، اور سالن بھی ہے، سالن کے طور پہ بھی یوز کرتے تھے نا، تیل کے طور پہ بھی، آج تک بھی لوگ اس کو سالن کے طور پہ استعمال کرتے ہیں. اور اس کے اندر اس وقت بھی سبزیاں وغیرہ ڈال لیتے تھے، اور اسی کو سمجھ لیں سالن کی طرح کھاتے تھے. تو یہ بہت ہی مفید ہے، اس کا درخت بھی کہتے ہیں 2000 سال تک زندہ رہتا ہے، اور اس کے فائدے تو اتنے، بیماریوں کے فائدے اس کے اندر ہیں. یہ کچا بھی کھایا جاتا ہے، اس کا تیل بھی کچا کھایا جاتا ہے، اور اس کو سالن کے طور پہ بھی کھایا جاتا ہے، اور اس کے مساج بھی کیا جاتا ہے، اینٹی سیپٹک کوالٹیز بھی ہیں اس میں، سینے کی کنجیشن کے لیے یہ بھی بہت اچھا ہے. اس کے تیل میں اگر آپ لہسن لال کر کے اور سینے پہ اس تیل کی مالش کریں، بہت فائدہ ہے. جوڑوں کی تکلیفوں کا علاج بھی اس میں ہے. तो कितने फायदे हैं ना एक तेल में, एक इस दरख्त से निकलने वाले फल में। वह इन नलकुम फिल अनआमी लाइबरा, और तुम्हारे अनआम में चौपायों में भी बहुत सबक है। सूरतुल अनआम में तो हम तफसील से भी पढ़ चुके हैं इन अनआम का, और फिर सूरह नहल में भी कितने फायदे हैं इन कैटल के। नुस्खी कुम मिम्मा फी बुतूनिहा, हम पिलाते हैं तुमको जो इसके पेटों में है, हम पिलाते हैं। इसका मतलब इंसान की अपनी काविश नहीं, ना जानवर का कोई अपना कमाल, अल्लाह ताला पिलाता है जो इनके पेटों में, और वो क्या है, दूध। सूरह नहल में भी इसकी बात आई थी ना कि कैसे अल्लाह ताला गोबर और खून के दरमियान में से दूध निकालता है तुम्हारे लिए। और सुभान अल्लाह, आप देखें कभी दूध के अंदर खून के छींटे नहीं नजर आ रहे, पेशाब के नहीं नजर आ रहे, गोबर नहीं नजर आ रहा, हालांकि उसी पेट की अंदर ये मशीनरी लगी हुई है, फैक्ट्री लगी हुई है दूध बनाने वाली। या आप जानवर को जिबा करें तो आपको नहीं नजर आता कि अंदर जी बहुत सारा दूध पड़ा हुआ है। अल्लाह ताला कैसे निकालता है। वलकुम फीहा मुनाफे व कसीरतुन, और तुम्हारे लिए इनमें फायदे बहुत सारे, बहुत सारे फायदे हैं। गोश्त भी खाते हो, हल भी चलाते हो, सवारी भी करते हो, और मिनहा ताकुलून, और तुम खाते हो इससे। वालैहा वालल फुल्की तुहमलून, और वो भी बात आ गई कि इन पे भी तुम, यानी इन देखो ऊंटों के ऊपर, फिर ये बैलों के ऊपर इस तरह सवारी भी करते हैं लोग। वालल फुल्की तुहमलून, और कश्तियों पे भी तुम उठाए जाते हो, उनके ऊपर भी सवारी करते हो। ये अल्लाह ताला ने अपने एहसानात बयान फरमा के तौहीद की तरफ इंसान को दावत दी कि इंसान ये तेरा रब है, तू उसको पहचान तो सही, और इंसान उसी रब से गाफिल रहता है, ये सारी चीजें देखता है, समझता है, सुनता है, इस्तेमाल करता है, लेकिन कभी पीछे नहीं देखता कि वो इनके पीछे बनाने वाला जो रब है उसका कितना शुक्र मैं अदा करूं। अगर इंसान गौर करने लगे तो शायद कोई लम्हा ऐसा ना हो जिसमें वो शुक्र के बगैर गुजारे, शुक्र के कलमात जिसमें उसकी जुबान पे ना हो, कोई लम्हा ना हो। सुभान अल्लाह। और आगे फिर जैसे यहाँ पे अल्लाह ताला ने दलाइले तौहीद दी हैं, आगे फिर एक पैगंबर का जिक्र फरमाया हो नूह अलैहि सलाम का, जिनका वाकया हम पहले भी पढ़ चुके हैं, और सूरह आराफ में भी ऐन इसी तरह से आता है, सूरह हूद में भी देख चुके हैं, और भी, और आगे आद और समूद का भी जिक्र आएगा। तो अल्लाह ताला ने पैगंबरों को भेजा अपनी पहचान करवाने के लिए लोगों को। सूरह नहल में अल्लाह ताला ने फरमाया ना कि हमने हर उम्मत में रसूल भेजा है कि सिर्फ अल्लाह की इबादत करो और इसके सिवा तमाम माबूदों से बचो। तो अंबिया की जो बेसत का मकसद था ना, अगर कोई पूछे कि क्या मकसद था, तो वो था तौहीद का पैगाम देना। तौहीद, ये नहीं कि बाज दफा लोग अल्लाह ताला को तो जानते होते हैं जैसे मुशरिकीन मक्का, लेकिन तौहीद को नहीं समझते। लोगों को अल्लाह ताला का तारुफ करवाना, सच्चा तारुफ, जो वाकई जो सही बात है वो वाली बताना, वरना हर एक ने कुछ ना कुछ खुदा का कॉन्सेप्ट अपने जहन में बिठाया होता है, लेकिन उनको सच्चा तारुफ कराना। इसी तरह लोगों की पेशानियों को, इन माथों को गैरुल्लाह के दर से उठा के अल्लाह के दर पे झुकाने की दावत देना, ये भी पैगंबरों का एक मकसद होता था बेसत का, कि गैरुल्लाह के दर से उठें और अल्लाह के दर पे झुकें। कुफारे मक्का कहते थे ना कि सारे इलाहों को छोड़ के बस हम एक इलाह की पूजा शुरू कर दें, ये तो बड़ी अजीब बात है। सहाबा और ताबेईन इसी तौहीद की दावत देते रहे कि लोगों, खालिक जो है बस वो एक है और वो अल्लाह है, और बाकी सारी मखलूक है। तो मखलूक के लिए लाजिम है कि वो सिर्फ उस अपने खालिक की इबादत करे। देखिए यहाँ पे आप सारी चीजों के बताया ना, अल्लाह ताला ने पैदा किया, तो मखलूक का काम क्या है कि वो अपने खालिक की इबादत करे, उसके आगे झुके, उसकी माने, क्योंकि उसने पैदा जो किया है, जाहिर है पैदा करने वाले का हक है ना। देखिए अब दुनिया में भी लाने का इंसान को जरिया उसकी माँ बनती है, जरिया बनती है, उसने पैदा नहीं किया, जरिया बनती है। इसी वजह से पूरी दुनिया में उसके ऊपर सबसे बड़ा हक उसकी माँ का होता है, ऐसा ही है ना, हालांकि वो सिर्फ जरिया बनी है। तो सोचें जो खालिक है उसका कितना बड़ा हक है। इसके बावजूद हम आज हालांकि मुसलमान हैं, लेकिन फिर भी हमारे अंदर नित नए गुमराह कुन फिरके और ऐसी बिदात और शिर्क के अकीदे इतने ज्यादा हैं, शैतान ने इस तरह से कह दिया कि ठीक है तुम मुसलमान तो रहो लेकिन ये सारा शिर्क करते रहो। इनमें एक अकीदा वाहदत वजूद भी है कि लोगों में ये भी बहुत फैलाया गया है कि वाहदत वजूद का अकीदा जो है वो ये कहता है खालिक और मखलूक में कोई फर्क नहीं है, सारी कायनात जो है ना, चाहे चाहे इंसान है, चाहे हैवान है, चाहे दरख्त है, सब चीज ही खुदा है। और इमाम इबन अरबी, एक इब्नुल अरबी है अलिफ लाम के साथ, वो तो सही है, लेकिन ये इबन अरबी जो है ये भी इबादत वजूद का अकीदा रखते थे। इबन अरबी, उन्होंने अपनी एक किताब के अंदर लिखा है, उनकी किताब है फुजूसुल हकम, उसमें उन्होंने लिखा कि हक और खल्क दोनों को जो दो कहता है वो शिर्क करता है। उन्हें हक अल्लाह और जो मखलूक है इनको जो दो कहता है ना वो शिर्क करता है, और जो दोनों को एक कहता है वो ही मुवाहिद है, उनके नजदीक ये है तौहीद। और इन चीजों से बहुत केयरफुल रहना चाहिए। और कोई कितनी भी खूबसूरत बातें करे, याद रखिएगा जिंदगी में एक बात, कितनी अच्छी बातें करे, कितने ही अच्छे लेक्चर्स दे दे, इतने ही जबरदस्त तरीका इनका, जबरदस्त बोलने का अंदाज है, फलां है, अगर अकीदा उसका सही नहीं है तो उसकी बातों को मत खातिर में लाएं, किसी दिन वो आपको भटका सकता है। वला कद अरसलना नूहन इला कौमी, और देखें यहाँ पे नूह अलैहिस्सलाम वो पहले रसूल थे, उनकी बात हुई कि हमने नूह अलैहिस्सलाम को भेजा इला कौमी अपनी उनकी कौम की तरफ, वकाला या कौम अब्दुल्लाह, तो उन्होंने फरमाया है मेरी कौम अल्लाह की दवा बात करो, मालकुम मिन इलाहिन गैरु, नहीं तुम्हारा कोई इलाह उसके सिवा, खालिक उसके सिवा कोई नहीं, तो इलाह कौन हो सकता है, इलाह वही होगा, इलाह कौन होता है जिसकी इबादत की जाए, इलाह वही होगा जिसने पैदा किया, जब तुम्हारा पैदा करने वाला वो एक है तो इलाह भी वही है, इबादत भी तो उसी की करो। यहां तक लोग मान जाते हैं कि हाँ वो खालिक है और उसी ने पैदा किया, लेकिन जब इबादत का मामला आता है तो फिर कहीं और झुकने शुरू हो जाते हैं। अफला तत्तकून, क्या तुम तकवा नहीं इख्तियार करो, तुम बात को नहीं समझते, तुम डरते नहीं हो अल्लाह की नाराजगी से। और चूंकि यहाँ हमने पहले किया हुआ तो हम जल्दी से इसको कवर कर लेते हैं। वकाल अल मलाउ लदीन कफरू, तो कहा सरदारों ने वो जिन्होंने कुफर किया, मैंने कौमी ही उसकी कौम में से, मा हादा इल्ला बशर मिस्लुकुम, ये तो कोई भी नहीं मगर एक इंसान ही है तुम्हारी तरह, बस इसका क्या काम है, युरीदु अन यतफद्दला अलैकुम, ये चाहता है बस कि तुम पे फजीलत हासिल कर लो, ये बड़ा बनना चाहता है, चौधरी बनना चाहता है, ये सरदार बनना चाहता है, ये इसलिए तुम्हें बुला रहा है कि आओ एक अल्लाह की तरफ और मैं अल्लाह का भेजा हुआ रसूल हूँ, ये तो हमारी तरह का ही इंसान है, हम हमारे अंदर से ही बड़ा बनना चाहता है ना असल में। वलौ शा अल्लाहु लअंज़ला मलाइकतन, अगर अल्लाह चाहता तो अलबत्ता नाजिल कर देता फरिश्ते, वो तो फरिश्ते नाजिल करके हमें कुछ बता सकता था, एक आम से आदमी को हमारे अंदर से उठा के खड़ा करना ये तो कोई बात समझ नहीं आती, यानी उनका मतलब था कि रसूल फरिश्ता होना चाहिए। माँ समेना बिहाजा फी आबाइन अलव्वलीन, हमने तो ऐसी कोई बात अपने कभी बड़ों से सुनी ही नहीं, हमारे घरों में तो नहीं कभी कोई ऐसी बात की गई, हमने तो नहीं कभी सुनी, आज भी कभी लोगों को हक बात बताए ना तो कहते हैं हमारे घर में तो कभी नहीं सुना, हमारे बड़ों ने तो कभी ऐसी बात नहीं की, सेम टू सेम वही वो बात कह रहे हैं, यानी दावत की आवाज को दबाने के लिए क्या वो कह रहे हैं, इल्जाम तराशियां, करेक्टर एसेसिनेशन, किसी का कैरेक्टर कोई खराब कर दिया तो फिर क्या, नहीं ये तो असल में इसकी पीछे क्या है, मोटिव क्या है इसका, बड़ा बनना चाहता है और कोई बात नहीं है। इन हुआ इल्ला रजुलुम बिही जिन्नत, और नहीं ये तो एक शख्स है जिसको जुनून लाहक है, यानी बीमार है, मजनून है, जिसको हम आज के वक्त में क्रेजी कहते हैं, पागल है, पता रब्बस बिही हत्ता हीन अस्तग़फिरुल्लाह, तो कहते हैं बस तुम इंतजार करो इसके साथ एक वक्त तक, यानी इसको इग्नोर कर दो बस ना, यानी जैसे हम कहते हैं ना इग्नोर क्यों कर दो, ये नहीं कि उनको कोई काम नहीं था, इग्नोर इस तरह से कि जैसे हम आज किसी को देखते हैं ना कि किसी को कोई दीन की तरफ आता है तो क्या कहने लगते हैं, नया नया बुखार चढ़ा दीन का, उतर जाएगा जल्दी, यहाँ कहते हैं ना इसको बड़ा इस्लाम का भूत सवार हुआ वह, जल्दी इसका भूत उतर जाना, इस तरह की बातें करते हैं। तो इस तरह ही वो कहने लगे, इंतजार करो एक वक्त तक, देखना खुद ही ये या तो फौत हो जाएगा या फिर खुद ही छोड़ देगा ये सब, ये थोड़े दिन की बातें हैं ऐसी। और फिर 950 साल तबलीग आपको पता है उन्होंने की, और उसके बाद फरमाया, काला रब्बिन सुरनी बीमा कत्तबून, ऐ मेरे रब मेरी मदद कर इस पे जो ये मुझे जुटलाते हैं। इतने सख्त तकलीफ में आ गए कि आखिरकार ये दुआ मांगने, अल्लाहु अकबर। सोचे एक नबी का कितना हौसला होगा कि 950 साल तबलीग करें, लेकिन जब पैमाना लबरेज हो गया तो फिर अल्लाह ताला से इन के खिलाफ दुआ की, जो आगे सूरह नूह में आएगी कि अल्लाह इनके अंदर किसी काफिर को ना छोड़ना। فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ, फिर हमने वही की उसकी तरफ के बना बनाओ एक कश्ती, भी आयुनी ने हमारी निगाहों के सामने, वही ना और हमारी वही के मुताबिक, नहीं अल्लाह ताला ने उनको फरमाया कि आप हमारी गाइडेंस में ये कश्ती बनाए। और ये आसान काम नहीं था, क्योंकि नूह अलैहिस्सलाम पहले से ये नहीं जानते थे, तो अल्लाह ताला ने वही करके समझाया कि कैसे बनानी है। फ़ाइज़ा जाए अमरुना, फिर जब आ जाए हमारा हुक्म, वफारत तन्नूर, और उबल पड़े तन्नूर, यानी ये एक साइन उनको बता दिया गया कि जब ऐसा हो जाए, जब तन्नूर उबलने लगे, तब यानी उसमें से भी पानी निकलने लगे, तो तब आप समझ जाना कि ये टाइम आ गया। तो उस वक्त क्या करना, फस लुक फीहा मिन कुल्लिन ज़ौजैन इस्नैन, फिर उस वक्त रख लेना, सवार कर लेना कश्ती के अंदर, ज़ौजैन इस्नैन यानी जोड़े जोड़े, हर चीज के दो दो जोड़ा, हर जानवर का दो दो जोड़ा, अब यानी जोड़ा जोड़ा उसको अपनी कश्ती, दो दो हर जानवर के मेल और फीमेल रख लें। वह अहलका, और अपने घर वालों को भी कश्ती में बिठा ले, इल्ला मन सबका अलैहिल कौलु मिन्हुम, सिवाय उनके जिनके ऊपर बात गुजर चुकी पहले। वो कौन थे? इशारा था उनकी बीबी और बेटे की तरफ। अस्तग़फिरुल्लाह, यानी अल्लाह ताला ने उनके बारे में पहले फैसला दे दिया, क्योंकि वो जो थे वो नूह अलैहिस्सलाम के दीन पर नहीं आए थे, उनकी तालीम को उन्होंने कबूल नहीं किया था। अल्लाह ताला ने फरमाया सबको बिठा लेना मगर सिवाय इनके, वला तो खातिबनी फिल्लदीना ज़लमू, और जालिमों के बारे में मेरे से कोई बात ना करना। फिर जालिम कौन? ये जितने भी मुशरिक थे। यानी अब आपने ये कह तो दिया है कि अल्लाह मेरी मदद करना इनके खिलाफ, ये जो मुझे झुटलाते हैं इनके खिलाफ मेरी मदद कर, तो उसके बाद फिर अब इनके बारे में कोई तरस ना खाना, कोई बात ना करना, कोई सिफारिश, कोई दरख्वास्त ना करना, बस अब ये हो जाना, चाहे वो कोई बीवी हो बेटा हो। लेकिन क्या हुआ था? अल्लाह ताला ने फरमा दिया इन्ना हुम मुग़रकून, ये सारे गर्क किए जाने वाले हैं, इन सब ने गर्क हो जाना, किसी ने भी नहीं बचना। अच्छा अब देख लें आप के इंसान को औलाद की मोहब्बत कैसी होती है, कि अल्लाह ताला ने ये फरमा दिया, नूह अलैहि सलाम ने कबूल कर लिया, लेकिन जब बेटे को डूबते हुए देखा ना तो रहा नहीं किया। इंसान अपने ऊपर तकलीफ बर्दाश्त कर लेता ना, अपनी औलाद पे नहीं कर पाता, तो उस वक्त कह दिया कि अल्लाह तू इसको बचा ले, ये तो मेरे हाल में से। तो अल्लाह ताला ने फरमाया नहीं है नूह, ये तो अमल गैर साले है, ये तो तेरे अहल में से नहीं है। उस वक्त क्या कहा था नूह अलैहि सलाम ने, कि बल्कि उस वक्त जब देखा था बेटे को कि कैसे वो डूब रहा है, तो उसको कहा कि आ जाओ तुम मेरे पास इसके ऊपर शिप में आ जाओ। तो बेटे ने कहा सूरह हूद में हम पढ़ चुके हैं। उसने कहा नहीं कोई बात नहीं, मैं एक पहाड़ की तरफ पनाह ले लूंगा, वो मुझे पानी से बचा लेगा। अल्लाह हु अकबर, वो मुझे पानी से बचा लेगा। तो अल्लाह ताला ने, अल्लाह ताला के उसको तो अमर से तो कोई भी नहीं बचा सकता, इसीलिए नूह अलैहिस्सलाम ने फिर कहा था आज के दिन अल्लाह के हुक्म से बचाने वाला कोई नहीं सिवाय उसके जिस पर अल्लाह ताला रहम कर दे। बेटा क्या कर रहा है, वो पहाड़ की तरफ पनाह लेना चाहता है कि पहाड़ मुझे पनाह दे दे, उसने ये नहीं कहा अल्लाह मुझे पनाह दे दे, अल्लाह ताला को तो मानता ही नहीं था, और पानी से मैं बच जाऊं, कई दफा इंसान अपनी जिंदगी में यही गलती करता है ना, ये कहता है ये दवाई मुझे बचा लेगी, ये डॉक्टर मुझे बचा लेगा, ये अस्पताल मुझे बचा लेगा, फलां लोग मुझे बचा लेंगे, मेरे कॉन्टेक्ट्स मुझे बचा लेंगे, और दुनिया की परेशानियों से बचता है उनके सहारा लेकर, उन पे तवक्कुल करके। जबकि नूह अलैहिस्सलाम जानते थे ना, उन्होंने कहा अल्लाह के हुक्म से अमरुल्लाह है ये, इससे कोई नहीं बच सकता सिवाय जिसके ऊपर अल्लाह ही रहम करे, यानी बचाने वाला सिर्फ अल्लाह है, और ये पानी नहीं है, ये तो अमरुल्लाह है, अल्लाह का हुक्म है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो जिस पर अल्लाह रहम कर दे, यानी उनको वो पता था, उनको यकीन था कि अल्लाह का रहम ही आज किसी को बचा सकता। तो ये कहानी थी, आपको पता है कि जमीन से भी पानी निकला, आसमान भी बरस रहा था, और फिर कैसे ये लोग डूब गए, तबाह हो गए, और फिर इज़स्तवैत अंत, और जब आप सवार हो जाए, आप भी और वह मम्मा का, और जो आपके साथ भी मोमिन, कितने मोमिन थे, 70 कहते हैं मोमिन थे पूरे 950 साल में, यानी अंडर 100। अब जब आप और आपके साथ के ईमान वाले जो वो फुल्क पे सवार हो जाए, फकुल अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नज्जाना मिनल कौमिल ज़ालिमीन, तो आप कहना अल्हम्दुलिल्लाह, सारी तारीफ उस अल्लाह के लिए, यानी जिसने हमें बचा लिया, और जिसने हमारे लिए इंतजाम कर लिया, और जिसने इस कौम की जो इस कदर जालिम कौम थी, इससे हमें निजात दे दी, इन सारी बातों पे शुक्र। अल्लज़ी नजाना मिनल कौम ज़ालिमीन, जिसने हमें निजात दी इस जालिम कौम से, क्योंकि जालिमों के अंदर रहना भी इंसान, जो शिर्क वाले हैं उनके अंदर रहना भी इंसान के लिए, जो मोमिन है उसके लिए बायस तकलीफ है, खास तौर पे जब वो बात ही नहीं मान रहे और वो तबलीग किए जा रहे हैं। वकुर रब्बी अंजिलनी मुंजलम मुबारक व अंत खैर मुंजिलीन, और आप जरूर ये कहें कि ए मेरे रब, मुझको उतार एक ऐसी जगह पे जो बाबरकत हो उतरने की, और जो और तू तो बेहतरीन है, मुंजिलीन उतारने वाला तू ही उतार सकता है, यानी इस तूफान के अंदर अल्लाह तू हमें मुबारक जगह पे उतारना। अब कश्ती तो जा रही है, कश्ती तो डूब भी सकती थी, कश्ती तो कहीं फंस भी सकती थी, अल्लाह तू वैसे तूफान के अंदर जहाँ चारों तरफ पानी ही पानी है सिर्फ और कुछ नहीं, अल्लाह तू हमें ऐसी मंजिल पे उतार। तो हमें भी कहीं पे भी, किसी नए शहर में जाना हो, किसी मुल्क में जाना हो, किसी नई जगह पे, किसी नए घर में, कोई भी ऐसी, किसी दुल्हन ने नहीं अपने घर में जाना है या कोई, तो ये दुआ पढ़ा करें, ये एक तरह की हिफाजत भी है, और इसके अंदर मुबारक जगह का मांगना भी है, तो ये बहुत ही अच्छी दुआ है। इन ये सवारी की दुआ नहीं है, लेकिन किसी जगह पे जाने की दुआ है। इन्ना फी ज़ालिकल आयातिल, बेशक इसमें निशानियां हैं, वह इन कुन्ना लमुबतलीन, और बेशक थे हम अलबत्ता आजमाने वाले, इम्तिहान लेने वाले। इंसान चाहता है मैं इम्तिहानों में ना पढ़ूं, लेकिन अल्लाह ताला इम्तिहान लेता है, क्योंकि उसने इसी के बेस के ऊपर इंसान के लिए आखरत का फैसला करना है, कि कौन है जो जन्नत में जाने के काबिल है, और कौन है जो जहन्नुम का ईंधन बनने वाला, इन्हीं इम्तिहानों की बेस पे। इम्तिहान जिंदगी में आते रहेंगे, अल्लाह ताला ने फरमाया इसमें अलबत्ता बड़ी निशानी है, और हम तो आजमाने वाले हैं ही, अल्लाह ताला ने उनको भी आजमाया, कौमे नूह इस आजमाइश में फेल हो गई, और कौमों पर भी, इंडिविजुअल्स पर भी आजमाइशें आती हैं, इम्तिहान आते हैं, और उसी वक्त ये मौका होता है साबित करने का कि इंसान में कितना ईमान है और कितना अल्लाह पे भरोसा है। अल्लाह ताला हम सबसे कबूल फरमाए, और इन आयात से सबक लेने की हम सबको तौफीक अता फरमाए। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिक, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। तिलावत सुनिए।
बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكنناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين قال رب انصرني بما كذبون فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفارت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين.